तमोगुण के कारी है जाते स्वच्छ नहीं। जो स्वच्छ पदार्थ होवे सोई अभास के योग होवे है, मलिन पदार्थ अभास के योग होवे नहीं। जैसे कांच और तांका ढकना दोनों पृथ्वी के कारी है, परंतु कांच तो स्वच्छ है तामे मुख का अभास होवे है, और ढकना स्वच्छ नहीं जाते तामे अभास होवे नहीं। देखो एक का आपने शीशा देखा होगा, कई ऐसे शीशे होंगे ना ऐसे ढक्कन वाले, तो उन्हें ऐसे खोल के आप मुख देख सकते हो। वो ये कह रहा है वो जो शीशा है वह भी पृथ्वी तो बनया, और जो ढक्कन है वह भी पृथ्वी तो बनया, पर मुंह देख लें वो नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी के सतोगुण का कारी है स्वच्छ कच, और जो ढक्कन वो तमोगुण का कारी है। यही हाल अंताकरण का है, अंताकरण जिहड़ा है वह सतोगुण का कारी है, इसलिए स्वच्छ है, उहदे विच प्रतिबिंब पै सकता है। ते बाकी जिहड़ा शरीर है इहदे विच नहीं पै सकता ना, क्यों? ये भूतों के तमोगुण का कारी है। ये पूरा शरीर जो है भूतों के तमोगुण का कारी है, इसलिए जड़ है, ये भी तमोगुण का कारी है, ये जड़ है। और जिहड़ा अंताकरण है वह भूतोगुण के सतोगुण का कारी है, इसलिए स्वच्छ है शीशे की तरह, ते उहदे विच चेतन का प्रतिबिंब पै। तैसे सतोगुण का कारी होने ते अंताकरण स्वच्छ है, ताही में चेतन का आभास होवे है। आभास माने प्रतिबिंब। शरीर आदि का और घट आदि के तमोगुण के कारी होने ते स्वच्छ नहीं, तिन में चेतन का आभास होवे नहीं। देख लो कह देता ना केड़े केड़े शरीर और घट आदि। अंताकरण में द्विध प्रकाश है जानते सोई परमाता है, अन्य नहीं। अंताकरण जो है ये विच दो प्रकार का प्रकाश है, दो प्रकार का कैसे? एक समान चेतन हो गया, एक विशेष हो गया, है ना? दो हो गया ना चेतन, एक तो समान चेतन हो गया, एक विशेष। देखो जय साहब ने याद है ना, तो ऐसे याद रखना चाहिए ना। इस रीति से अंताकरण में द्विविध प्रकाश है, एक तो व्यापक चेतन का प्रकाश है, दूसरा आभास का प्रकाश होवे है, ठीक है। शरीर आदि कण में और इस रीति से अंताकरण में द्विविध प्रकाश है, एक तो व्यापक चेतन का प्रकाश है, दूसरा आभास का प्रकाश होवे है, ठीक है। शरीर आदि कण में और शरीर आदिक और घट आदिकन में एक व्यापक चेतन का प्रकाश तो है, दूसरा आभास का प्रकाश नहीं। जानते द्विध प्रकाश सहित अंताकरण विशिष्ट ही चेतन जो है परमाता कहिए। एक प्रकाश सहित तो जो घट आदिक तीन करके संयुक्त चेतन परमाता नहीं, जितने मत में जिनके मत में अंताकरण में आभास नहीं, तिनके मत में घट आदि की न्याय अंताकरण में भी आभास का दूसरा प्रकाश तो है नहीं। व्यापक चेतन का जो एक प्रकाश अंताकरण में, सोई व्यापक चेतन का प्रकाश घट आदिकन में है। जानते अंताकरण विशिष्ट की न्याय घट विशिष्ट व शरीर विशिष्ट व भीत विशिष्ट चेतन भी परमाता हुए चाहे। भीत मने दीवार कंध। कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है देखो, जैसे सूर्य धुप लगी है ना, पहला समझ लो फिर प्रकरण समझ में आएगा। जैसे धुप लगी है, ये हुण की कह रहा? वो कह रहा अंताकरण में द्विविध प्रकाश, मने द्विविध मने दो प्रकार का प्रकाश है। दो प्रकार का प्रकाश कैसे है? वो कह रहे जैसे धुप लगी है, कंध ते पै रही है, सारे पै रही है, वो होगी समान धुप, ठीक है। और दूसरा आपा शीशा लैके सूरज के सामने खड़े हैं, इहदे चो प्रतिबिंब निकल के वह दीवार से पै रहा है। वो जिथे वह पै रहा उथे सूरज धुप नहीं सी, वो समान धुप सीगी ना, सीगी ना। तो फिर आपा जो प्रतिबिंब उत्ते दीवार से पाया वह विशेष होगी, उत्थे उत्थे दो प्रकार का प्रकाश नहीं हो गया। यही हाल अंताकरण का जी। तो आप फिर अपना स्वरूप किनू मनी बैठे हैं? विशेष नू। तो है कि आप समान्य ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅੰਤਾਕਰਨ ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵਿਭੂ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਐਸੇ ਅੰਤਾਕਰਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਵਿਆਪਕ, ਔਰ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਵਾਉਗੀ। ਜੀਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਬਈ। ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਖੁੱਲੇ ਕਬਾੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ, ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਅੰਤਾਕਰਨ ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਲਿਸ਼ਕੋਰ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲੇਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨੇ ਧੁੱਪ ਉਹ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਧੁੱਪ ਉਹ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ, ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜਾਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਘਟ ਆਦਿਕ ਘਟ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਅੰਤੇ ਅੰਤਾਕਰਨ ਮੇਂ ਜਹੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਾਕਰਨ ਸਤੋਗੁਣ ਕਾ ਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੋਣੇ ਤੇ ਚੇਤਨ ਕਾ ਆਭਾਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਪਦਾਰਥ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਆਭਾਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਕੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਆਭਾਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੇ ਯੋਗ ਜੋ ਅੰਤਾਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੁਕਤ ਹੀ ਚੇਤਨ ਪਰਮਾਤਾ ਕਹੀਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੁਕਤ ਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਘਟ ਆਦਿਕ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਆਦਿਕ ਆਭਾਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਚੇਤਨ ਪਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਆਭਾਸਵਾਦ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਅਵਸ਼ੇਦਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਾ ਆਦਿਕ ਚਾਰ ਚੇਤਨ ਕਾ ਸਰੂਪ, ਅਬ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੇਤਨ ਬਤਾਏਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅੰਤਾਕਰਨ ਆਭਾਸ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਅੰਤਾਕਰਨ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਆਭਾਸ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਅੰਤਾਕਰਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਬ ਅੰਤਾਕਰਨ